भगवान हमारा साथी है, हम उनके संग संग रहते हैं, वो अपने संग संग रहते हैं। जैसे दीपक में बाती है भगवान हमारा साथी है।
ओम शांति। इस सीएडी प्रोजेक्ट के अंदर हमें विशेष तीन बातों की तरफ ध्यान देना होता है। जैसा कि आपके सामने बोर्ड भी लगा हुआ है, एक तो स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए राजयोग लाइफस्टाइल, जो कि हमारी मानसिक शुद्धता बनाए रखने में मददगार है, और शरीर के लिए लो फैट हाई फाइबर डाइट, और तीसरा पॉइंट है मॉडरेट एरोबिक डिस्क वॉकिंग। इस सत्र के अंदर हम मॉडरेट एरोबिक डिस्क वॉकिंग के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा करने से पहले मैं फिजिकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज के बारे में एक सत्य कहानी सुनाती हूं कि फिजिकल एक्टिविटी हमारे जीवन के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। 18th सेंचुरी के एंड की ही बात है, इंग्लैंड के अंदर एक व्यक्ति थे थॉमस पार्की। वो 152 वर्ष की आयु में भी अपने खेत में कार्य करते थे, क्योंकि वो पेशे से किसान थे। उनको ऐसे इतनी उम्र में खेत में कार्य करते देखते हुए एक रईस अंग्रेज ने उसको देख लिया और उन्हें एक अचरज की चीज समझकर वो अपने साथ अपने घर ले आए, अपने रईस मित्रों को दिखाने के लिए। और वहां उनको खूब अच्छा अच्छा भोजन खिलाया गया। आजकल हम जानते हैं अच्छा भोजन क्या होता है, शराब मीस इत्यादि, और उनको होटलों में घुमाता रहा, जिसकी वजह से कुछ ही दिनों में उनको इनडाइजेशन हो गया, अपच हो गया, और कुछ ही महीनों में वो इस दुनिया से ही चल बसे। 152 वर्ष 9 महीने। तो अभी आप समझ सकते हैं कि फिजिकल एक्टिविटी हमारे लिए क्यों जरूरी है, इसकी इम्पोर्टेंस समझिए। क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी का उस किसान के जीवन में अभाव हो गया था, और खाना खाएं हम अच्छा, लेकिन उसका प्रॉपर कंजम्पशन होना भी बहुत जरूरी है, ताकि वो एनर्जी में कन्वर्ट हो सके, नहीं तो टॉक्सिन अंदर में भरते जाते हैं। और एक सर्वे ही इंग्लैंड में किया गया हार्ट के पेशेंट के ऊपर, और उस 10 व्यक्तियों का सर्वे किया गया एडल्ट का, उन्होंने पाया उनमें से 9-7 के जो हार्ट अटैक थे उसका कारण था फिजिकल एक्टिविटी की कमी। इसलिए हम समझ सकते हैं कि भोजन के साथ साथ, विचारों के साथ साथ फिजिकल एक्टिविटी का होना भी हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। अगर हम अपने आप को निरोगी रखना चाहते हैं, अपने हार्ट को हेल्दी रखना चाहते हैं, तो यही वजह है कि आज बीमारियां बढ़ती जा रही है। और हार्ट के पेशेंट को कोई ज्यादा विग्रस एक्टिविटी करने की जरूरत नहीं है, उन्हें सिर्फ मॉडरेट एरोबिक ब्रिस्क वॉकिंग ही सफिशियंट है, जो कि आप प्रैक्टिकल में कर भी रहे हैं और जो हर कोई कर सकता है, यंग जवान बूढ़ा महिला कर सकते हैं या नहीं। तो अभी हम उसी के ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे, और इससे पहले इस फिजिकल एक्टिविटी की हमारी लाइफ में जो इम्पोर्टेंस है, उसमें हम 5 विशेष बातों की तरफ ध्यान देंगे। एक तो फिजिकल एक्टिविटी की हमारे को हेल्दी हार्ट रखने के लिए क्या इम्पोर्टेंस है, दूसरा कैसे जो भी हम एक्सरसाइज करते हैं मॉर्निंग ब्रिस्क वॉकिंग, ये हमारे हार्ट के ऊपर प्रभाव डालती है, तीसरा हमें कितनी फिजिकल एक्टिविटी करना चाहिए, कितना जिससे कि हमारा हार्ट जो है वो हेल्दी रह सके, और चौथा पॉइंट है कौन सी एक्सरसाइज हमारे लिए बेस्ट एक्सरसाइज है, पांचवा पॉइंट है कितने सुरक्षित तरीके से हम ब्रिस्क वॉकिंग करें या फिजिकल एक्टिविटी करें कि हम बिना किसी हानि के जो हमने एक टारगेट रखा है हेल्दी हार्ट के लिए वो हम प्राप्त कर सके। द इम्पोर्टेंस इफेक्ट एम और कौन सी प्रकार विथ शॉर्ट ऑफ एक्टिविटी और हाउ सेफली कितने सुरक्षित तरीके से हम फिजिकल एक्टिविटी करें। तो जैसे कि यहाँ स्लाइड के अंदर भी दिखाया गया है, तो खड़ा होना पड़ेगा मुझे थोड़ा, कि ये है एरोबिक ब्रिस्क वॉकिंग। एरोबिक क्यों कहते हैं, ये बहुत वर्षों पहले डॉक्टर केनेथ ने एरोबिक शब्द का इस्तेमाल किया था, और एरोबिक मतलब खुली हवा के अंदर जाकर वॉकिंग करना जहां प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन होता है, और जब भी पेशेंट आते हैं तो पहले उनके टीएमटी टेस्ट इत्यादि करवाकर उनको आना होता है, और पेशेंट आर इंडिविजुअली प्रिस्क्राइब्ड एक्सरसाइज लेवल टिपिकली ब्रिस्क वॉकिंग अकॉर्डिंग टू देयर बेसलाइन टीएमटी रिजल्ट। जो भी आपका टीएमटी ने रिजल्ट शो किया है उसी आधार पर हरेक इंडिविजुअल को अलग अलग ब्रिस्क वॉकिंग प्रिस्क्राइब की जाती है, बताई जाती है। नेक्स्ट कर लें, ये यहाँ का थोड़ा सा क्लोज करेंगे तो दिखने में थोड़ा अच्छा लगेगा, और वहाँ एरोबिक, अनैरोबिक क्यों नहीं, अनैरोबिक जहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है वो है अनैरोबिक, क्योंकि अनैरोबिक के अंदर ऑक्सीडेशन प्रॉपर मात्रा में नहीं होता। ऑक्सीडेशन एक प्रक्रिया है, हम जो कुछ भी खाते हैं उसका प्रॉपर ऑक्सीडेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे भोजन के पाचन के लिए ऑक्सीजन और हीट की जरूरत होती है, और एरोबिक में जहां पर काफी मात्रा में ऑक्सीजन होती है वहां जाकर हम जब मॉर्निंग वॉक करते हैं तो वहां हमारा ऑक्सीडेशन जो है वो प्रॉपर होता है। तो इसलिए अनैरोबिक ना होके कौन सी एक्सरसाइज हमें करनी है, एरोबिक एक्सरसाइज। और यूएसए की साइंटिस्ट एड मैककेबे ने एंटार्क्टिका में जाकर आइस कोर ड्रिलिंग किया, और वहां उन्होंने पाया कि प्राचीन समय में वातावरण के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा जो थी वो 38 से लेकर 50% तक थी, और उसके कंपैरिजन में आज के एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, 20.9। ये तो गांव के अंदर, सिटीज में इससे भी कम है। ये सर्वे होते रहते हैं क्योंकि ऑक्सीजन का एकमात्र स्रोत इस प्लैनेट के ऊपर है पेड़ पौधे, और आज वो कटते जा रहे हैं, कल कारखाने हम बनाते जा रहे हैं, दूसरी विषैली गैसेस बढ़ती जा रही हैं और ऑक्सीजन लेवल कम होता जा रहा है, जिसकी वजह से प्रॉपर ऑक्सीजन हमें नहीं मिलती। और साइंटिस्ट रॉबिन एंड कार्टिन ने यह बताया, लैक ऑफ सेलुलर ऑक्सीजन सप्लाई इज प्रोबेबली द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेल इंजरी। एंड इज ऑल्सो द अल्टीमेट मैकेनिज्म ऑफ डैमेज, क्योंकि हमारा जितने भी अंग है, हर अंग कुछ सेल का समूह है। अगर हमारे सेल को प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी तो सेल जो है वो क्या हो गए, इंजर हो गए, और जिसका इफेक्ट हम जो ऑर्गेन से अंगों से जो कार्य करते हैं उनका मैकेनिज्म डैमेज होगा। क्लियर हुआ? और सेल तक प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचे इसके लिए बहुत जरूरी है डीप ब्रीदिंग, ताकि ऑक्सीजन जो है हमारे सेल तक जाए। और खुले में जाकर वॉकिंग करना बहुत जरूरी है, ना कि हम बंद कमरे करके बैठे, जैसे कि आजकल जिम इत्यादि में लोग जाते हैं, एक ही कमरे में कितने इकट्ठे होकर हम एक्सरसाइज जब करते हैं तो हमें प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलती। और सब एज के लोग वहां पर आते, बुजुर्ग भी आते, यंग भी आते, और बुजुर्ग यंग के कंपटीशन के अंदर आकर एक्टिविटी करना शुरू करते हैं, जिससे कि हानि भी हो सकती है। इसलिए आप सभी को भी क्या बताया जाता है कि कहां हमें एक्टिविटी करनी है, खुले गार्डन में जाकर, जहां पर मैक्सिमम ऑक्सीजन हमको अवेलेबल होती है। और इसकी बजाय जहां ट्रैफिक ज्यादा होता है वहां सड़क पर हम वॉकिंग करते हैं, तो वहां हमें पॉल्यूटेड एयर मिलेगी या फ्रेश एयर मिलेगी? पॉल्यूटेड एयर मिलती है, तो हम उसको अवॉइड करें और खुले में जाकर वॉकिंग करना बहुत जरूरी है। क्योंकि बाय ब्रीदिंग, ईटिंग एंड लिविंग वी आर कॉन्स्टेंटली टेकिंग अननेचुरली नॉन फूड सब्सटेंसेस इनटू आवर बॉडी। हम भोजन के जरिए, सांस के जरिए, और जो हमारा रहने का तरीका है, लाइफस्टाइल है, उसके जरिए हम अपनी बॉडी के अंदर अननेचुरल और नॉन फूड स्टफ, अप्राकृतिक और ऐसे जो ना खाने वाले पदार्थ है वो भी अपनी बॉडी के अंदर आज डाल रहे हैं। बाय ब्रीदिंग कैसे? क्योंकि हमारा लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, हम अपने घर को तो अंदर से क्लीन करते हैं, घर के बाहर चाहे कितना भी कचरा पड़ा रहे, लेकिन ऑक्सीजन जो हमारे घर के अंदर आ रही है वो कहां से आ रही है? बाहर से होकर आ रही है। तो हमें पोल्यूटेड एयर मिल रही है या कैसी एयर मिल रही है, सोचिए। और जो हमारी खाने की आदतें हैं आज, गुस्सा में भर के या डिसलाइकिंग रहती है भोजन, कुकिंग, ये प्रॉपर नहीं है, जिसके बारे में चर्चा हम डाइट के बारे में जब सत्र होगा उसके अंदर करेंगे। नेक्स्ट करें, तो इस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिक वेस्ट इकट्ठा होता चला जाता है। कैसे? देखिए, प्रिजर्वेटिव, कलरिंग, फ्लेवरिंग, हाइड्रोजनेटेड ऑयल एंड आर्टिफिशियल केमिकल, स्मॉक एटसेट्रा एटसेट्रा, डे इन एंड डे आउट, फिलिंग अप ऑफ टॉक्सिक वेस्ट इनसाइड आवर सेल्स एंड बॉडी फ्लूइड्स। प्रिजर्वेटिव, आज हम मार्केट की चीज खाते हैं तो उसमें प्रिजर्वेटिव मिक्स रहता है ताकि वो लंबे समय तक खराब ना हो, लेकिन उसके अंदर फिर विटामिन इत्यादि की कमी हो जाती है। और कलरिंग, जो आज उनको, जैसे हम शरबत लेने जाते हैं मार्केट के अंदर, सब में कलर मिक्स होता है और कलर हमारे बॉडी के लिए बहुत हानिकारक है, कैंसर आती बीमारियां भी उससे होती है। दूसरा, फ्लेवरिंग, आज हम नेचुरल चीजें नहीं डालते, इलायची इत्यादि, खुशबू के लिए आर्टिफिशियल एसेंस मिक्स करते हैं, जिसकी वजह से, और हाइड्रोजनेटेड ऑयल मतलब डालडा घी इत्यादि, इससे जो भी हम डिश प्रिपेयर की जाती है बेकरी जहां पर बनते हैं ये बिस्किट्स या ब्रेड या कोई भी दूसरी फ्राइड चीज, पिज्जा इत्यादि, तो वो लंबे समय तक थोड़ा सा ऑक्सीडाइज नहीं होते जब हम हाइड्रोजनेटेड ऑयल यूज करते हैं, लेकिन उससे ट्रांस फैटी एसिड जो है बनते जाते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि, और आर्टिफिशियल केमिकल्स, आज जो जैसे असेंस भी डालते, लेकिन जिस चीज के लिए हम कहते हैं भाई गुलाब जल भी है, तो उसमें भी आर्टिफिशियल चीज हम यूज करते हैं। इस तरीके से हमारे अंदर बॉडी के अंदर टॉक्सिक वेस्ट विषैले पदार्थ जो है इकट्ठे होते जाते हैं, हमारे फ्लूड के अंदर भी, जो अंदर में पानी है उसके अंदर भी, और इससे फर्टाइल ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट और फंगस। जो पानी स्वच्छ होना चाहिए उसके अंदर ये बैक्टीरिया, फंगस इत्यादि बढ़ते जाते हैं। वैसे तो ये बैक्टीरिया, फंगस, पैरासाइट इत्यादि जो है हमारे लिए अच्छे भी हैं, क्योंकि जो भी हम भोजन खाते हैं उस भोजन से विटामिन्स बनाने में ये मदद करते हैं। लेकिन अगर इनकी तादाद बढ़ जाती है तो ये हमारे लिए हानिकारक होते हैं, है दास, क्योंकि हमारे लिए क्या बनाते हैं, विटामिन्स बनाते हैं। लेकिन अगर तादाद बढ़ जाए तो दास भी क्या हो जाते हैं, नौकर भी क्या हो जाते हैं, हानिकारक बन जाते हैं। तो इससे प्री मैच्योर एजिंग, जल्दी बुढ़ापा आता है, और सफरिंग एंड अर्ली डेथ, बीमारियां ज्यादा आती है और जिससे अर्ली डेथ, अकाल मृत्यु इत्यादि होती है, बीमारियां की वजह से भी होती है। और ओनली मेथड बाय विच डिजीज काजिंग टॉक्सिक वेस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन लीव अवर बॉडी टू कंबाइन विद ऑक्सीजन, यानी कि उनको ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये जो बैक्टीरिया, फंगस, वायरस है, ये कम हो, इसके लिए जरूरी है कि उन जो भी हम भोजन कर रहे हैं प्रॉपर ऑक्सीजन अंदर में जाना जरूरी है, और जहां ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन होते हैं वहां ये बैक्टीरिया, फंगस इत्यादि पैदा नहीं हो सकते। और विदाउट एनफ ऑक्सीजन द बॉडी सिंपली कैनॉट टेक आउट द इनर गार्बेज। तो ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत जरूरी है, जो अंदर में गार्बेज इकट्ठा हो गया है। नेक्स्ट करें, क्योंकि अगर प्रॉपर ऑक्सीजन अंदर में नहीं होगा तो ये जो गार्बेज है इट स्टे विद इन अस, वो हमारे अंदर में ही रहता है, जिससे ऑर्गेन्स एंड फंक्शन ब्रेक्स डाउन। जब ऑर्गेन्स के अंदर ही पावर नहीं है तो कार्य भी नहीं हो पाएगा, और इससे क्या होता है, आवर बॉडी फ्लूड एंड ब्लड बिकम डर्टी एंड टॉक्सिक। जब तक ये बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, ये गंदगी फ्लूड तक है, तब तक तो फिर भी हम थोड़ा अपनी लाइफ को चलाते रहते हैं, लेकिन जब ये हमारे ब्लड के अंदर एंटर कर जाते हैं तो बहुत ज्यादा हानिकारक हो जाते हैं। जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर 45 केजी पानी है, बताया ना, ए ह्यूमन बॉडी इज 2/3 ओवर 45 केजी ऑफ वाटर, एंड दिस वाटर इज फिल्दी एंड एवरी सेल फ्लोट्स इन इट। और जो भी हमारे सेल हैं बॉडी के, वो इस गंदे पानी में तैरते रहते हैं। और रीजन व्हाई वी गेट सिक एंड टायर एंड सिक एंड टायर ऑफ बीइंग सिक एंड टायर, यही वजह है कि हम अच्छा भोजन भी खाते रहते हैं, आराम भी करते रहते हैं, लेकिन फिर भी थके थके महसूस करते हैं अपने आप को, हमें फीलिंग ऑफ वेल बीइंग की फीलिंग नहीं आती है। और साथ साथ हमेशा हमें लगता है कि जैसे कि हम बीमार हैं, हम चेकअप भी करा के आते और अपने आप को बीमार महसूस करते रहते हैं। कारण क्या है कि अंदर में टॉक्सिक वेस्ट इकट्ठा हो गया है, जिसकी वजह से फंगस, बैक्टीरिया, वायरस बढ़ते जाते हैं, और कोल्ड जर्म्स एंड वायरस ड्रा एक्स्ट्रा पावर फ्रॉम टॉक्सिन और कंटामिनेंट्स फाउंड इन ब्लड स्ट्रीम्स एंड फीड द ओल्ड बॉडी इंजरीज एंड सिस्टम कंजेशन। और ये जो बैक्टीरिया, फंगस, वायरस है, इनको जो हमारी बॉडी के अंदर गंदगी होती है उससे भोजन मिलता रहता है, और भोजन मिलता रहता है, उनकी तादाद बढ़ती जाती है, यही वजह है कि बीमारी जो है वो क्रोनिक डिजीज हो जाती है। क्या कहते, ये बीमारी तो पुरानी बीमारी हो गई है, और फिर वो जल्दी से ठीक भी नहीं होती। जैसे कहते हैं ना, बीपी हो गया है, डायबिटीज हो गया, क्यों क्रोनिक इनको कहते हैं? क्यों कहते हैं अब पूरा समय हमें दवाई ही खाना पड़ेगा? क्योंकि सिर्फ टेबलेट्स इसका साधन नहीं है, सिर्फ डाइट से ये कंट्रोल नहीं हो सकती। टेबलेट्स भी चाहिए, डाइट भी प्रॉपर चाहिए, विचारों की भी शुद्धता चाहिए, साथ साथ फिजिकल एक्टिविटी का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि कोई भी बीमारी कभी भी एक कारण से नहीं है, उसके पीछे दो तीन कारण इन्वॉल्व होते हैं। जैसे बीपी है, डायबिटीज है, डिप्रेशन है, ये फ्री डिजीज नहीं है। एसिडिटी है, ओबेसिटी है, ये फ्री डिजीज नहीं है कि ये ठीक नहीं हो सकती। हम थोड़ा सा लाइफस्टाइल चेंज करें तो ये डिजीज अपने आप ठीक हो सकती है। हम कार की सर्विस भी कराते हैं तो उसको भी लंबा जब तक नहीं चलाते हमें नहीं पता चलता इसकी सर्विस हुई है या नहीं। और हम भोजन खा के अपनी प्लेट भी बाहर उठा के रखना नहीं चाहते। तो फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है, क्योंकि एनएरोबिक वातावरण में ये बैक्टीरिया, फंगस, वायरस जो है बहुत ज्यादा बढ़ते जाते हैं। अब जैसे कि हम राजयोग लाइफस्टाइल ले रहे हैं, तो चाहे डाइट हो, चाहे फिजिकल एक्टिविटी हो, हम सब के अंदर राजयोग लाइफस्टाइल का, विचारों का जरूर प्रयोग करते हैं। जैसे आपको सिखाया भी जाता है जब आप वॉकिंग करते हैं तो, क्योंकि देखिए जब हम अपने आप को भूल गए कि मैं आत्मा हूँ, अपने पिता से दूर हो गए, परमात्मा से, और जब हमारी जो पावर थी, आत्मिक गुण थे, वो कम हो गए, तो उसकी वजह से हमारे मन और बुद्धि दोनों पोल्यूटेड हो गए ना। मन के अंदर विचार, भावनाएं, स्मृति सब कैसी हो गई, शुद्ध रही या अशुद्ध? और बुद्धि में आत्मिक ज्ञान तो रहा ही नहीं, सिर्फ जीव को चलाने की बुद्धि रही। तो जैसे जब हम अपने आप से दूर हो गए तो हमारे मन बुद्धि का विनाश होता चला गया, पावर उसके अंदर नहीं रही। इसी तरह से अगर शरीर के जो, जिससे ये शरीर बना है, 70,000 बिलियन सेल्स, उनको अगर प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, फैट, प्रोटीन, विटामिन इत्यादि नहीं मिलेंगे, तो क्या हमारा शरीर स्वस्थ रह सकता है? और ये शरीर जो कि कई ऑर्गन का समूह है, क्या उनका मैकेनिज्म ठीक रह सकता है ऑर्गन का? सोचे हम तो, जैसे सूर्य की रोशनी से विटामिन्स भी मिलते, प्रकाश भी मिलता है, और कीटाणुओं का नाश भी होता है ना। लेकिन उसके अभाव में जब हमने लाइट जो हम रात में इस्तेमाल करते हैं, तो आप सोचें क्या उससे हमें कोई विटामिन्स मिलते हैं? नहीं मिलते ना। उससे कीटाणु नाश होते हैं और ही कीड़े मकोड़े आ जाते हैं। और क्या होता, प्रकाश, क्या प्रकाश दूर हो जाता? एक ही कमरे में हम कितने बल्ब इत्यादि लगाकर रखते हैं, फिर भी उस कमरे में भी कोने में अंधेरा रहता है या नहीं? तो और उस इसी तरह से जब आत्मिक पावर भी कम हुई तो हमने क्या किया, कितनी भक्ति, पूजा, जप, तप, शास्त्र इत्यादि किया, लेकिन क्या हमारी पावर बढ़ी? और ही जो अंदर में वाइसेस थी, जो आध्यात्मिक पावर कम हो गई थी, उसके अभाव में जो विकार थे वो बढ़ते चले गए, और आत्मा के जो सूक्ष्म ऑर्गेन्स हैं उनको कार्य करना आत्मा के लिए बड़ा मुश्किल हो गया। इसी तरह से शरीर को भी प्रॉपर भोजन चाहिए, और साथ साथ ये जैसे योग है, रूहानी ड्रिल, तो ये एक्सरसाइज क्या है, फिजिकल एक्टिविटी, ये है शारीरिक ड्रिल, जो कि शरीर के टॉक्सिन्स बाहर निकालती है। ठीक है, नेक्स्ट करें। और क्योंकि हाइड्रोजन इन अनैरोबिक, जब एनारोबिक वातावरण होता है तो उसके अंदर हाइड्रोजन आयन बढ़ जाते हैं, एसिडिटी बढ़ जाती है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जो टिश्यूज हैं वो बहुत फ्लेक्सिबल है, क्लीन है। और जब हम भोजन करते हैं पूरा ऑक्सीडेशन नहीं होता है, तो इसकी वजह से जो फैट प्रोटीन इत्यादि है वो उन टिश्यूज के ऊपर जमा होना शुरू हो जाते हैं। तो जो फ्लेक्सिबल टिश्यूज हैं वो क्या होते जाते हैं, सोलिडिफिकेशन, जमने, फ्लेक्सिबिलिटी उनकी कम होती चली जाती है, और इंटीग्रेटेड, इस तरह से वो आपस में जुड़ना शुरू हो जाते हैं, और कंसंट्रेटेड, जुटते जुटते गहन गहरे बनते जाते हैं, जिससे एनर्जी फॉर्म जो है वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होती और गेट्स डेंसर एंड डेंसर, और जिससे क्या होता है, एक्सट्रीम हार्डनेस सेट इन, जो हमारे सेल हैं उसके ऊपर बहुत ही एक्सट्रीम, ज्यादा जो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं, हार्ड हो जाते हैं, और जिससे क्या होगा, मेक सेल हार्ड एंड ब्रिटल, सेल हार्ड हो जाते हैं और वो क्रैक होना शुरू हो जाते हैं, बिल्ड सेल्स, और नए सेल बनना शुरू हो जाते हैं जो कि सेल नहीं है, एक आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाती है, बिल्ड स्ट्रक्चर, एक नई स्ट्रक्चर बना लेती है। एग्जाम्पल के तौर पर हम समझें, जैसे एक दो एग्जाम्पल से भी क्लियर कर सकते हैं। हमारे देश के अंदर एक समय था जब भारतवासी ही रहते थे, धीरे धीरे मुस्लिम आए, सब आपस में मिलकर रहे, अंग्रेज आए आपस में मिलकर रहे, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, अलग अलग स्ट्रक्चर बनती चली गई, जिससे क्या हुआ, देश की यूनिटी को खतरा होना शुरू हो गया। तो अब जब देश की यूनिटी को खतरा होना शुरू हुआ तो जो ओरिजिनल निवासी थे उन्होंने क्या सोचा, भाई देश की यूनिटी क्यों खत्म हो रही है, तो जो आउटर, जो बाहर से लोग आए उनको हमें बाहर निकालना चाहिए। अब हुआ ना, जैसे अमेरिका के अंदर भी हुआ जो वो टावर का गिरना, तो जिसके ऊपर शक गया तो क्या कहते, भाई इन लोगों को बाहर निकालो, ऐसा ही करते हैं ना, या ये समझे, और जब तक हम बाहर नहीं निकालेंगे उनको तब तक आपस में यूनिटी नहीं आती। और एक बहुत ही लाइव एग्जाम्पल हम अपने आप से देखें, जब हमारे घर में कोई मेहमान आता है तो हम उसकी कितनी खातिरी करते हैं ना, और दो तीन दिन तो करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, मेहमान तो जा ही नहीं रहा है, तो अब क्या करो, हम आपस में एक दूसरे से बोलना बंद, मेहमान को कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन मेहमान की जो पहले आव भगत थी वो कम हो जाती है, जो हम पहले डिशेस बनाते थे अब नहीं बनाएंगे तो कम होगा, और क्या होगा, आपका बजट डिस्टर्ब हो जाता है, आप दोनों में लड़ाई होना शुरू हो जाती है, अब ये वाइब्रेशन मेहमान तक भी जाना शुरू हो जाते हैं, होंगे या नहीं, और इस तरह से हम उस मेहमान को अपने घर से वापस, और आगे के लिए हम सचेत हो जाएंगे, हम कोई भी आएगा तो उसकी ज्यादा खातरी, हाँ एक दिन रुकेंगे तो करेंगे, क्योंकि हमारा नहीं तो बजट खराब होता है ना ऐसा। इसी तरह से भी जो ये फैट है, साल्ट है, शुगर है, ये फॉरेन पार्ट है, ये हमारी बॉडी में अपना घर बना लेते हैं, और कोई भी फॉरेन चीज जब हमारे घर के अंदर आकर रहना शुरू करे तो हम समझ सकते हैं कि हमारे शरीर के फंक्शन को कैसा होगा, कार्य करेगा नहीं करता ना, इसलिए क्या करना चाहिए, अब जब हमें नॉलेज मिल रही है तो हमें सचेत हो जाना चाहिए कि हमारे अंदर में जो बीमारियां हैं उसका कारण हमारा गलत खानपान, हमारा लिविंग स्टैंडर्ड है। तो हम चाहे तो अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए प्रॉपर समझ लेकर उसको हम दूर करें, ठीक है। तो इस तरह से जो एनारोबिक से ये नुकसान हमें होता है, हमारे सेल जो है डैमेज हो जाते हैं और अपनी अलग स्ट्रक्चर उनकी बन जाते हैं। जो वॉशिंग मशीन होती है ना, उसमें भी देखो आप सर्फ इकट्ठा होकर कितना हार्ड हो जाता है कि आप चाकू से भी उसको रगड़ के उतारना चाहे तो वो नहीं उतरता। उसके लिए फिर अलग से सॉल्यूशन आते हैं, फिर आपका खर्चा कितना बढ़ता है, बीमारी आती तो खर्चा भी बढ़ता है ना। तो इसलिए क्या चाहिए, प्रॉपर ऑक्सीजन का वातावरण होना बहुत जरूरी है। और इससे क्या होता है, जो हमारे अंदर में टिश्यूज जो हैं वो डिसोल्विंग होना शुरू हो जाएंगे। जब हम वॉकिंग करेंगे ना तो जो अंदर से सॉलिड है वो डिसोल्व होना शुरू हो जाएगा और डिसइंटीग्रेटेड, उनमें आपस में जो जुड़ाव था वो खत्म होना शुरू होगा और डिकंसेंट्रेटेड, उनकी गहनता भी कम हो जाएगी, वो वीक होते जाएंगे और सॉलिड फॉर्म एनर्जी फॉर्म वो क्या है, फ्लूइड स्टेट में आ जाएगी, जिससे कीप सेल क्लीन, हमारे सेल क्लीन हो जाएंगे, कीप सेल फ्लेक्सिबल, वो फ्लेक्सिबल हो जाएंगे फिर से, और इरेज द क्रिएटेड फॉर्म, जो अननेसेसरी एक फॉर्म क्रिएट हो गई थी वो फिनिश हो जाएगी, और रिमूव अननीडेड स्ट्रक्चर, जो सेल नहीं है लेकिन सेल बन गए हैं वो स्ट्रक्चर अपने आप फिनिश हो जाती है। तो फिजिकल एक्टिविटी जरूरी है या नहीं, और जब फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो जब हम क्रोध में, गुस्से में या स्ट्रेस के अंदर या चिंता में या कोई दुख की फीलिंग के अंदर भी वॉकिंग करते हैं ना, तब हम चाहे ऑक्सीजन वाले वातावरण में भी होते हैं लेकिन हमें प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलती। इसके भी ऊपर भी स्टडी होती है कि कहते जब हम क्रोध में होते हैं, एक मनोवैज्ञानिक ने एक स्टडी मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा, जापान की है ये, तो उन्होंने कहा जब क्रोध आता है तो उस समय हम अपने सांस को रोक लें ताकि क्रोध का इफेक्ट जो है हमारे अंदर में ना जाए, क्योंकि उससे हमारे हार्मोन डिस्टर्ब होते हैं। और हार्मोन्स के बारे में आप पढ़ भी रहे हैं, सुबह भी बताया ना डॉक्टर गुप्ता ने, कैसे सुख शांति के वाइब्रेशन जब हम चिंतन करते हैं तो उससे कैसे हमारी एंडोथेलियन जो वॉल है उसके ऊपर इफेक्ट आता है। तो ये चीजें समझे हम, कभी भी हम चिंता दुख अशांति में नहीं, वॉकिंग करते वक्त हमेशा सोल कॉन्शियस होकर वॉकिंग करें, उस समय दूसरी चीजों को अपने अंदर से निकाल दें, नेक्स्ट करें, ताकि आप प्रॉपर ऑक्सीजन अपने अंदर में लेकर जा सकेंगे। अब है रोल ऑफ एरोबिक एक्सरसाइज इन मैनेजमेंट ऑफ सीएडी। जो सिडेंट्री पीपल होते हैं उनको सीएडी होने के 3 times ज्यादा चांस होता है। सिडेंट्री लोग जानते हैं ना, जो टेबल वर्क करते हैं, जो मेंटल वर्क करते हैं, जो जिनके जीवन में फिजिकल एक्टिविटी का अभाव होता है उन्हीं को ये बीमारी ज्यादा होती है। और बेस्ट एक्सरसाइज जो है वो सीएडी के रिग्रेशन के लिए वो है वॉकिंग ऑन लेवल आफ्टर सनराइज एंड बिफोर सनसेट। और इसके द्वारा हमें क्या करना है, 2000 से ज्यादा कैलोरी जो है पर वीक एक्सरसाइज के जरिए स्पेंड करनी है, यूज करनी है, जो अंदर में एक्स्ट्रा जमा है। और नेवर वॉक आफ्टर मील, कभी भी भोजन के पश्चात एक्सरसाइज वॉकिंग नहीं करें। इसके ऊपर भी बड़े सर्वे हुए हैं कि भोजन के पश्चात एक्सरसाइज क्यों नहीं करनी चाहिए। एक सर्वे किया गया, मुझे कंट्री का नाम याद नहीं आ रहा, और उन्होंने ये सर्वे डॉग के ऊपर किया। जैसे भोजन कराया गया कुत्ते को, एक को तो आराम कराया गया और एक को दौड़ाया गया। तो जिसको आराम कराया गया था वो तो उसका भोजन भी प्रॉपर डाइजेस्ट हुआ, लेकिन जिसको एकदम भोजन के पश्चात दौड़ाया गया था उसकी डेथ हो गई। क्यों ऐसा होता, क्योंकि हम कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो उसके लिए हमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड की जरूरत होती है। और जब हम भोजन भी खाते हैं तो भोजन के डाइजेशन के लिए भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड की जरूरत होती है। और जब हमने भोजन किया तो जो भी ब्लड है वो हमारे जठर के आसपास आकर इकट्ठा हो जाता है। और जब हम वॉकिंग करते हैं तो जब वो वॉकिंग किया तो वो तो भोजन अनडाइजेस्टेड ही पड़ा रहा, और वॉकिंग के लिए वो ज्यादा इम्पोर्टेंट डिमांड है, वो उसके अंदर खर्च होता है। तो इसलिए भी कभी भी हमें भोजन के पश्चात वॉकिंग नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट करें, क्योंकि प्रॉपर भोजन, वैसे भी सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी नहीं, यहां तक कि मेंटल वर्क भी नहीं करना चाहिए कम से कम 1 घंटा। इसलिए हम देखते हैं कि चाहे ऑफिस वगैरह है चाहे स्कूल है, वहां पर 1 घंटे का ब्रेक आपको मिलता है, मिलता है या नहीं, कि हम भोजन करें और थोड़ी सी देर रिलैक्स हो। स्कूल के अंदर भी ऐसे होता है, भले पढ़ाई के बीच में ब्रेक हुआ लेकिन वहां भी हमें 1 घंटे का ब्रेक किया, हमने पहले भोजन किया स्टडी के पश्चात, फिर हमें थोड़ा रिलैक्स किया, फिर उसके बाद हम स्टडी चाहे कोई भी एक्टिविटी करते हैं। तो अब आता है कि एक्सरसाइज जो है हमें कितना और कैसे करें, कि स्पीड ऑफ वॉकिंग एंड कैलोरी स्पेंड, अगर हम 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते हैं तो कैलोरी स्पेंड होती है पर मिनट 3, और अगर हम 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेंगे तो कितनी कैलोरी स्पेंड होगी, 4 कैलोरी। अगर 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते हैं तो 5 कैलोरी पर मिनट स्पेंड होती है। इस तरह से एक एग्जाम्पल के जरिए समझाया जा रहा है कि सुबह और शाम दोनों मॉर्निंग आवर में है जब हम वॉकिंग करते हैं, तो मॉर्निंग में अगर 45 मिनट 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते हैं तो क्लोरी स्पेंड होता है 225, और इवनिंग में जब हम 30 मिनट 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते हैं तो हमारा क्लोरी स्पेंड होता है 90। और इस तरह, क्योंकि 1 ग्राम फैट से हमें 9 कैलोरी मिलती है, इस तरह से सुबह और शाम की मॉर्निंग वॉक से जो हमारा फैट लॉस होगा वो कितना होगा, 35 ग्राम पर डे के हिसाब से। और 1 महीने में जो फैट का लॉस होगा वो होगा 1 kg। नेक्स्ट करें, और फिजिकल एक्टिविटी के समय साइकोलॉजिकल फैक्टर में भी इम्प्रूवमेंट आती है। प्रॉपर एक्सरसाइज लीड टू, कैसे, इससे कंडीशनिंग ऑफ द हार्ट, हार्ट की कंडीशनिंग हो जाती है। आप देखते हैं ना, हमें आदत नहीं होती है चलने की क्योंकि हम डरे हुए हैं, लेकिन जब हम वॉकिंग करना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे हमारा हार्ट कंडीशन होना शुरू हो जाता है। एंड बेटर कंट्रोल ऑफ हाई बीपी एंड डायबिटीज, बीपी और डायबिटीज पहले भी बताया, ये फ्री बीमारी नहीं है, अंदर में टॉक्सिक वेस्ट की वजह से ये बीमारियां होती है। नमक ज्यादा खाते हैं बीपी क्यों होता है, आप स्ट्रॉन्ग मेंटल एफर्ट्स करते हैं एंग्जाइटी आप में बनी रहती है, आप ज्यादा साल्ट खाते हैं, ऐसे ही डायबिटीज भी क्यों होती है, शुगर है, तनाव है, फ्राइड आइटम ज्यादा खाते हैं, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। तो इसलिए जब हम वॉकिंग करते हैं जो टॉक्सिक वेस्ट अंदर में इकट्ठा है उससे बीपी और डायबिटीज भी हमारी कंट्रोल में आना शुरू होती है। जो भाई बहन डायबिटिक हैं, बीपी हैं, वो जरा ध्यान से देखें इसकी इम्पोर्टेंस, और इससे ओबेसिटी में भी कमी होती है और बैड कोलेस्ट्रॉल एलडीएल एंड ट्राइग्लिसराइड दोनों वो भी कम होते चले जाते हैं। ओबेसिटी, मोटापा और इम्प्रूवमेंट इन गुड कोलेस्ट्रॉल, हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल एचडीएल बढ़ना शुरू हो जाता है, और फीलिंग ऑफ फिटनेस एंड वेलबींग, और हमें फिट भी स्वस्थ महसूस होता है और अंदर में खुशी बनना शुरू हो जाती है, महसूस होती है और इससे हमारा स्ट्रेस भी कम होता है, टेंशन भी कम होती जाती है। जो स्ट्रेस और टेंशन कारण है ना, स्ट्रेस भी वॉकिंग से कम होता है। अगर कभी आपको स्ट्रेस हो ना, स्ट्रेस में वैसे इंसान क्या दिल नहीं करता मैं जाकर वॉकिंग करूं, फिर आलस्य उसे ले खींचता है, अलबेलापन, वो कहेगा मेरे में शक्ति नहीं है, मुझे यहां दर्द होता है, मुझे यहां दर्द, मन मेरा नहीं करता। नहीं, मन को समझाना है, इसीलिए आपको नॉलेज दी जाती है। जब भी स्ट्रेस भी हो तो वॉकिंग करेंगे तो अपने आप स्ट्रेस रिलीज होंगे, क्योंकि रिलैक्सेशन हार्मोन्स जो है वो रिलीज होना शुरू होते हैं, जैसे कि एंडोर्फिन और डिया, ये भी रिलैक्सेशन हार्मोन्स है। डिया भी, डिया हाइड्रो एपी एंड्रो स्टीरोन इसको बोलते हैं, स्टीरोन, और इससे ओपनिंग ऑफ कोलेट्रल अराउंड कोरोनरी ब्लॉकेज, अपने आप जो है कोलेट्रल बनना शुरू हो जाते हैं। जैसे मेन रास्ता ब्लॉक हो जाता है किसी वजह से तो क्या होता है, सिटीज के अंदर छोटी छोटी गलियों से हम आना जाना शुरू कर देते हैं। लेकिन जैसे कि समझा भी रहे हैं आपको डॉक्टर गुप्ता कि ये कोलेट्रल भी बंद हो जाते हैं अगर ज्यादा हम स्ट्रेस इत्यादि करते हैं तो, अदरवाइज नेचर अपने आप बाईपास करती है थोड़ा सा लाइफस्टाइल चेंज करने से ही। नेक्स्ट करें, साइकोलॉजिकल फैक्टर एंड एक्सरसाइज। फ्यू वेल परफॉर्म स्टडीज प्रूव विद रेगुलर एक्सरसाइज, कुछ रिसर्च से ये प्रूव हुआ है कि अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो इससे हमारी एंग्जाइटी और डिप्रेशन कम होता है और इससे टाइप ए बिहेवियर इज मॉडिफाइड टू टाइप बी बिहेवियर। सभी जानते हैं ना टाइप ए बिहेवियर, परफेक्शनिस्ट बाय नेचर, वर्क प्रेशर, पॉलीफेजिक बाय नेचर, टाइम प्रेशर, वो अपने आप मॉडिफाई होकर टाइप बी बिहेवियर, क्योंकि आपकी कैपेसिटी भी बढ़ जाती है ना वर्क करने की, और इम्प्रूवमेंट इन सेल्फ एफिकेसी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। नहीं तो क्या होता है, बीमारी की वजह से हैंडीकैप्ड लाइफ है। क्यों? क्योंकि मेडिकल रिस्ट्रिक्शन है, फियर साइकोसिस है, आप कहीं भी जाते हैं अपने साथ एक बड़ा सा अपनी मेडिसिन जरूर लेकर जाना पड़ता है, और जब आप कहीं अकेले यात्रा पर जाते हैं तो घर के दूसरे लोगों को आपकी चिंता बनी रहती है, और जब आप भी जाते हैं तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता कि भाई पता नहीं रास्ते में कुछ भी ना हो। जब तक व्यक्ति घर नहीं आ जाता वापिस, घर वालों को भी चिंता रहती है, एक तो बीमारी की चिंता और दूसरा एक एक्स्ट्रा बर्डन हमारे ऊपर बिल्डअप होता जाता है स्ट्रेस का, और इससे क्या होता है फिजिकल एंड इमोशनल स्ट्रेस, शरीर पर भी प्रेशर तनाव आता है और मानसिक तनाव भी बढ़ता जाता है, मानसिक प्रेशर भी बढ़ते जाते हैं दोनों के ऊपर, पेशेंट भी और उससे संबंधित लोगों के ऊपर भी, और साथ साथ फर्दर डैमेज द हार्ट, और इससे हार्ट और ज्यादा डैमेज होता चला जाता है और उसको हानि पहुंचती जाती है। नेक्स्ट करें, सेल्फ एफिकेसी क्या है। सेल्फ एफिकेसी इज डिफाइंड हाउ एन इंडिविजुअल्स जजमेंट रिगार्डिंग हिज कैपेसिटी फॉर परफॉर्मेंस ऑफ ए टास्क और एक्शन। एक व्यक्ति का उसके कार्य के प्रति या किसी भी बात के प्रति वो अपना कैसा योग्यता दर्शाता है वो क्या है, सेल्फ एफिकेसी। यानी कि सेल्फ एफिकेसी क्या है, आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस कि किसी भी कार्य के करने में हमारा क्या सा कॉन्फिडेंस है, और ये सेल्फ एफिकेसी जो है ये चार मेथड के जरिए इम्प्रूव की जा सकती है। एक तो पर्सुएशन, पर्सुएशन मतलब जबरदस्ती, आपको समझाया जाता है। जब आप यहाँ आते, आपको ना भोजन पसंद होता है, ना आप राजयोगी लाइफस्टाइल लेना चाहते हैं, ना वॉकिंग करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी आपको कहा जाता है नहीं आप कीजिए। उठाते हैं ना चलाने के वक्त भी, क्योंकि डॉक्टर को मालूम है कि कुछ नहीं होगा, अगर कुछ होगा भी तो उसको कैसे मैनेज किया जाता है। भले जिनको ये एडवाइस दी जाती है उनके पास अभी पूरी नॉलेज नहीं आई है, इसलिए शुरू में उनको जबरदस्ती भी चलाया जाता है, साथ साथ इन्फॉर्मेशन के जरिए नॉलेज आपको दी जाती है और इनएक्टिव टेक्निक्स जो भी, फिर आपका दोबारा से एंजियोग्राम भी कराया जाता है, टीएमटी टेस्ट भी कराया जाता है, और जब हम उसके अंदर इम्प्रूवमेंट देखते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। आपको क्लियर हुआ? या एक एग्जांपल बताएं, जैसे एक बच्चा होता है, बीमार होता है, वो दवाई लेना पसंद नहीं करता क्योंकि दवाई बहुत कड़वी है, उसको भोजन खाना पसंद नहीं होता, माँ जबरदस्ती उसको भोजन कराएगी, जबरदस्ती उसको दवाई डालेगी, नहीं तुम लोगे तो दवाई से ठीक हो जाएगी, नहीं तो डराएगी भी थोड़ा बहुत, उसको डॉक्टर आके सुई लगाएगा, तो बच्चा दवाई लेता है, वो फिर धीरे धीरे उसकी हेल्थ इंप्रूव करती है, तो कहती है देखो तुमने दवाई लिया, अच्छा भोजन खाया तो तुम ठीक हो गए ना, इसलिए आगे से कभी दवाई लेना मना नहीं करना, भोजन खाना मना नहीं करना। और बच्चा इस बात को समझता है तो अपने आप भी वो टाइम पर कहेगा हाँ मुझे इस चीज की जरूरत है, माँ को याद दिलाएगा कि अब मुझे दवाई दो, अब मुझे ये भोजन दो। तो इसी तरह से हमें जबरदस्ती इन पर्सुएशन से, इन्फॉर्मेशन से और इन एक्टिव टेक्निक, जैसे बच्चा ठीक हो गया तो वो भी कहेगा अब मुझे इस चीज की जरूरत है, इससे मेरी हेल्थ खराब होती है। और विकारियस एक्सपीरियंस क्या, जैसे देखिए अंधेरी रात हो और आप जा रहे हो गली में अकेले, साथ कोई कुत्ता भौंकने लगे, आप तो नहीं चल सकते थे, नहीं चल सकते थे ना, क्योंकि आपको एंजाइना पेन होता है, हार्ट बीट इरेगुलर हो जाती है, पल्पिटेशन होती है, लेकिन अब आप चल सकते हैं, तेजी से दौड़ेंगे भी, वो कहां से पावर आई ना, ये है ये विकारस एक्सपीरियंस। कोई भी ऐसा सडन हमको एक्सपीरियंस होता है तो आप सोचते हैं कि नहीं मैं तो चल सकता हूँ, मेरे अंदर में पावर है, मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकता हूँ, क्योंकि जब वो चीज हमने देखी, रात है कुत्ता भौंक रहा है, पता नहीं कैसा है, कहीं काट ना ले, तो एक अंदर में क्या आया, हिम्मत आई, साहस आया, एड्रिनल ग्लैंड से उसके अंदर है आत्मविश्वास जागृत करने के, निर्भय बनाने के। तो इस तरीके से हम अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट कर ले। अब है मॉडरेट एरोबिक एक्सरसाइज शेड्यूल। मॉडरेट क्यों कहा इसको, मॉडरेट इसलिए कहा कि अगर आपको चलते फिरते कोई भी सिम्टम्स, लाइट हेडेडनेस, हल्कापन अंदर में महसूस होता, दिमाग में खालीपन, या आपका हाथ सुन होता, या आपका सांस फूलता है, या हार्ट बीट इरेगुलर होती, तो आपको कहते भाई थोड़ी देर बैठ जाओ फिर चलो, एक्सट्रीम कोल्ड है, एक्सट्रीम हीट है, उसमें भी आपको कहते भाई उसमें कम एक्सरसाइज करो, क्योंकि उसमें भी ऑक्सीजन की कमी होती है, तो इसको इसलिए कहते मॉडरेट है ये। और कैसे, टाइप ऑफ एक्टिविटी, ऑन लेवल ब्रिस्क वॉकिंग इन द ओपन एयर विद ए वार्म्स एंड कूल डाउन पीरियड विद फ्लेक्सिबिलिटी रूटीन, वार्मिंग अप पीरियड और कूल डाउन पीरियड, थ्री फेज के अंदर ये एक्टिविटी आपको करनी है। जैसे हम कार चलाते हैं, पहले गर्म करते हैं, फिर फर्स्ट गियर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिर रिवर्स करते हैं तो एकदम फर्स्ट पर नहीं आ जाते, कैसे आते हैं, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट। तो ऐसे ही पहले आपको 5 मिनट स्ट्रोल करना धीरे धीरे, इससे हम जो वॉकिंग करना शुरू करते हैं, हमारे सोल कॉन्शियस होकर जब करते हैं तो हमारे सेल को ये मैसेज मिल जाता है कि अब हम कोई फिजिकल एक्टिविटी करने जा रहे हैं। अपने आप वो मैसेज जाता है। इसलिए जो भी आप एक्टिविटी सुबह करते हैं तो आपको क्या कराया जाता है, जरूरी नहीं है कि आप वे जो 8-9 एक्सरसाइज करते हैं, सोल कॉन्शियसनेस या डीप ब्रीदिंग या नेक की या बैक की जो भी एक्सरसाइज करते हैं, चेस्ट, ये जो हम करते हैं, जरूरी नहीं है। आप वॉकिंग भी कर सकते हैं सिंपल, और आप वैसे भी कर सकते हैं। तो 5 मिनट चले और फिर फास्ट चले, फिर ब्रिस्क वॉकिंग है। ब्रिस्क का मतलब 1 मिनट में 110 और 20 स्टेप्स, इसलिए ब्रिस्क वॉकिंग कहा। और जरूरी नहीं आप शुरू में ही 110 और 20 स्टेप चलेंगे, या आप शुरू में ही 45 मिनट चलेंगे, नहीं, धीरे धीरे हमें ये स्टेमिना बनाना है। तो कैसे हमें ये करना है, तो जैसे है इंटेंसिटी ऑफ एक्सरसाइज, वेरियस साइंटिफिक रिसर्चेस प्रूव्ड मोस्ट इफेक्टिव ट्रेनिंग इंटेंसिटी फॉर अटेनिंग एरोबिक फिटनेस इज इन द रेंज ऑफ 50% टू 70% ऑफ द सब्जेक्ट्स मैक्सिमल कैपेसिटी फॉर एफर्ट्स। जो भी जिस भी पेशेंट को जब वॉकिंग करना है तो शुरू में उसको 50% से लेकर 75% जो है अपना मैक्सिमम हार्ट बीट मेंटेन करना है। एकदम 70%, 50% से कम नहीं और 70% से ज्यादा नहीं, क्योंकि ज्यादा करने से भी आपको कोई फायदा नहीं है, और अगर आप कम करेंगे तो आपको जो एम है एक्सरसाइज करने का वो आप प्रॉपर अचीव नहीं कर सकते, इससे आपका हार्ट हेल्दी नहीं होगा। तो 50% और 70% लेना जरूरी है। और इसके लिए नेक्स्ट करें, ये कैसे निकालना है ये बताते हैं। क्या इवनिंग स्ट्रोल, वो तो शाम को, सुबह ब्रिस्क वॉकिंग होता है और शाम को इवनिंग स्ट्रोल होता है। शाम को मतलब आप आराम से घूमे स्लो, सुबह फास्ट। जो मॉर्निंग में हम वॉकिंग करते हैं वो जैसे कि हम कार को पूरे दिन के लिए एक्टिवेट कर लेते हैं, और शाम के जो इवनिंग स्ट्रोल है, दिन भर हमने जो वर्क किया उसको जैसे कि हम मल्लम पट्टी कर रहे हैं आराम से। तो जो दिन भर सेल वर्क करने से सेल का डैमेज हुआ, ऑर्गेनिक डैमेज हुआ, जब हम वॉक करते हैं खुली हवा के अंदर सूरज डूबने से पहले, तो सेल की रिपेयर हो जाती है और आपको सुख की नींद आती है। तो शाम को इवनिंग स्ट्रोल, शाम को ब्रिस्क वॉकिंग, फास्ट कभी नहीं चलना चाहिए, आराम से चलो सोल कॉन्शियस होके। और सुबह सोल कॉन्शियस भी है, साथ में ब्रिस्क वॉकिंग भी जरूरी है। तो ये कैसे हमें निकालना है 50% और 70%, एस्टिमेटिंग मैक्सिमम हार्ट रेट फ्रॉम एज। एक मैक्सिमम प्रिडिक्टेड हार्ट रेट जो है वो है 220, ये एक अज्यूम वो है टारगेट। इसमें से हमें अपनी एज माइनस कर लेना है, हर एक इंडिविजुअल को एज माइनस करना है, और फिर उसका ट्रेनिंग हार्ट रेट हमको निकालना है। सिंपल परसेंटेज वो कैसे निकालना है, 50% और 70%। तो जैसे अज्यूम टारगेट 220 में से 60 माइनस किया तो 160 बीट्स पर मिनट। और जब आप वॉकिंग करते हैं ना, तो आप शुरू में अपना चेक करेंगे कि आपकी बेसल हार्ट रेट कितनी है। जितनी आपकी बेसल हार्ट रेट आई उसका 50% और 70% आपको निकालना है। क्लियर हुआ? जो कि आपको सीखना भी पड़ेगा कि 15 सेकंड में आपको कितनी हार्ट बीट आई, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो आपकी बेसल हार्ट रेट है। फिर उस बेसल हार्ट रेट का 50% और 70% निकालना है। तो इसमें एक एग्जांपल के जरिए क्लियर किया है कि एक 60 साल के व्यक्ति का 50% प्रिडिक्टेड हार्ट रेट जो 50% है वो कितना है, 80 बीट्स पर मिनट, और 70% 112 बीट्स पर मिनट। नेक्स्ट करें, वो आपको सिखाया जाएगा सारा। तो स्टेप वाइज इंप्रूवमेंट इन इंटेंसिटी ऑफ एक्सरसाइज, स्टेप वाइज इंप्रूवमेंट। कैसे, फर्स्ट कैलकुलेट बेसल हार्ट रेट ड्यूरिंग डेली मॉर्निंग वॉक, डेली डेली का आपको चेक करना पड़ेगा, और फिर इनिशियली अचीव 50% ऑफ मैक्सिमम प्रिडिक्टेड हार्ट रेट एंड कंटिन्यू फॉर 30 to 35 minutes। जरूरी नहीं है आप शुरू में 45 minutes वॉक करें, आप शुरू में 30 minutes करें, 25 minutes करें, 20 minutes करें। इस तरह से ओवर ए पीरियड ऑफ 1 month ग्रेजुअली बिल्डअप स्लोली टू 60% ऑफ मैक्सिमम प्रिडिक्टेड हार्ट रेट। 1 महीने में आप 50% से बढ़ाते बढ़ाते 60% तक ले जाएं और अचीव 70% ऑफ मैक्सिमम प्रिडिक्टेड हार्ट रेट एज द हेल्थ परमिट्स। इस तरह से धीरे धीरे आपको ये अपना स्टेमिना बढ़ाना है। होता है ना, कुछ भाई बहन नहीं चल पाते तो जबरदस्ती नहीं, इसलिए क्या कहा, मॉडरेट भी है। और नॉट इफ यू आर ए ऑन बीटा ब्लॉकर थेरेपी, रिड्यूस 5 to 10 फ्रॉम द ट्रेनिंग हार्ट रेट। अगर आप कोई बीटा ब्लॉकर दवाई इत्यादि लेते हैं तो जितनी भी आपकी जो हार्ट बीट है उसमें से 5 या 10 हार्ट बीट कम रखें, ज्यादा बढ़ाने की कोशिश ना करें, और डिपेंडिंग ऑन द डोज ऑफ द बीटा ब्लॉकर थेरेपी। फिर ये आपको आपके डॉक्टर पर्सनली आपको एडवाइस देंगे, कौन कितनी डोज लेता है तो उसको कितनी किस हिसाब से करना पड़ेगा। नेक्स्ट करें, फिर वही है, ड्यूरेशन ऑफ एक्सरसाइज, ब्रिस्क वॉकिंग एट द कॉन्स्टेंट पेस, रोज जरूर करना है, रेगुलर जरूर करना है, और अचीव 50% to 70% ऑफ मैक्सिमम प्रिडिक्टेड हार्ट रेट फॉर एटलीस्ट 20 to 30 minutes। एज फिटनेस इम्प्रूव्स दिस कैन बी एक्सटेंडेड टू 45 minutes। इस तरह से धीरे धीरे हमें 45 minutes तक लेके जाना, और फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरसाइज डेली मॉर्निंग ब्रिस्क वॉक डेली करें, रिपीटिशन है ये, और फॉर अबाउट 45 minutes, और एज एडवाइज बाय योर डॉक्टर्स, विद सनराइज और सन सेट, इवनिंग स्ट्रोल विद सनराइज और नहीं ब्रिस्क वॉकिंग विद सनराइज एंड इवनिंग स्ट्रोल विद सन सेट, एंड डेली इवनिंग स्ट्रोल स्लोली वॉकिंग स्लो वॉकिंग फॉर अबाउट 30 minutes बिफोर सनसेट। नेक्स्ट करें, लर्न पल्स, कैसे हमें पल्स लेना है वो हमें सीखना है, एंड रिकॉग्निशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द सिम्टम्स। जो भी हम में महसूस सिम्टम्स होते हैं, कैसे भी है, छोटे हैं चाहे कैसे भी, विशेष कोई भी सिम्टम्स होते हैं, वो भी हमें नोट कर लेना है, और दवाइयों का जो प्रभाव होता है वो भी हमें नॉलेज में रखना है, और द एबिलिटी टू कोप अप विद क्लाइमेट कंडीशन, वातावरण के हिसाब से, क्लाइमेट के हिसाब से हमें वॉकिंग करना है। अगर बहुत ज्यादा ठंडी है तो प्रॉपर ड्रेस पहनकर, सिर पे कैप वगैरह लगा के वॉकिंग करें, शूज वॉकिंग शूज होने चाहिए जिसमें अच्छा कुशन होता है, चप्पल से वॉकिंग नहीं करें। आप खुद ही इसके अंदर डिफरेंस महसूस करेंगे, जो कि हम खुद भी देखते हैं, जब हम वैसे वॉकिंग करते हैं चप्पल पहन के तो वो वॉक नहीं होती, वो काफ के अंदर भी क्या होता है, स्ट्रेन खिंचाव आता है, नीज के अंदर घुटनों में भी दर्द होता है, ज्वाइंट्स में। लेकिन जब आप शूज पहन के चलते हैं तभी आप फास्ट वॉकिंग करेंगे और आपकी लेग्स को ज्वाइंट्स को किसी तरह का कोई डैमेज नहीं होगा। तो आप शूज पहनकर, प्रॉपर क्लोथ पहनकर वॉकिंग करेंगे। नेक्स्ट करें, फिर वही है जो कि रिपीटिशन है, कि कैसे पहले 5 मिनट जरूर एकदम फास्ट वॉकिंग ना करें, पहले वार्म करें, फिर धीरे धीरे फास्ट में आप खिलाड़ियों को भी देखते हैं ना, एकदम खेलने से पहले वो क्या करते रहते हैं, ग्राउंड में थोड़ा सा उछलते रहेंगे, इधर उधर घूमते रहते हैं, फिर इससे जो है हमारी कैपेसिटी इम्प्रूव होती है। पहले 5 मिनट वार्म अप पीरियड, देन फिर कूल डाउन पीरियड 5 मिनट्स, और अवॉइड एक्सट्रीम ऑफ हीट एंड कोल्ड। ज्यादा गर्मी में भी ऑक्सीजन की कमी है तो सर्दी में भी है, तो उस समय हम थोड़ा कम वॉकिंग करें, ज्यादा नहीं। अगर ज्यादा करेंगे तो फिर वो हार्ट को जास्ती मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी हार्ट की पंपिंग पावर ब्लॉकेज की वजह से वैसे भी कम है। इसलिए जरूरी है कि इस चीजों का, वेदर का भी हम ध्यान रखेंगे, एक्सरसाइज रेगुलर, अवॉइड एक्सेसिव फील ऑफ एक्टिविटी, ओवर कॉन्फिडेंस में आकर ज्यादा एक्टिविटी नहीं करना है, अडियरेंस टू प्रिस्क्राइब लिमिट्स बाय योर डॉक्टर, जो आपके डॉक्टर ने जितना आपको एडवाइस किया है उसी लिमिट के अंदर आपको रहना है, अवॉइड इंटेंस कंपटीशन, जैसे कि मैंने पहले भी बताया जिम के अंदर जैसे कंपटीशन होता है, तो इस तरह से हमें भी वॉकिंग के अंदर कंपटीशन में नहीं आना है, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से हमें करना है, और रिड्यूस द एक्सेसिव लोड व्हेन आइदर इस्कीमिया सिम्टम्स और एंग्जाइटी डेवलप एंड रिपोर्ट्स ऑल सिम्टम्स पार्टिकुलरली लाइट हेडेडनेस चेस्ट पेन और सिंकोप नो मैटर हाउ ब्रीफ। कोई भी एक्सेसिव लोड हमको नहीं लेना है, ये भी पहले भी आपको बताया गया है, कोई आपको अंदर में पेन भी होता है या सिर चकराता है या दिमाग खालीपन महसूस होता है, लाइट हेडेडनेस, तो ऐसे में हम इन सिम्टम को नोट करें और उस समय वॉकिंग नहीं करें। सेफ्टी, इसने क्या कहा था, सेफ तरीके से हमें जो भी फिजिकल एक्टिविटी करनी है वो एक्टिविटी करनी है। तो इस तरह से ये जो आपको बताया शुरू में 5 पॉइंट्स बताए थे कि क्यों फिजिकल एक्टिविटी इम्पोर्टेंट है, कैसे प्रभाव डालती है, इफेक्ट करती है हमारे हार्ट को, हेल्थ को, और कितना हमें लक्ष्य प्राप्त करना है उस हिसाब से भी लिमिट बताया, और कौन सी तरह की वॉकिंग हमें करनी है और कितने सेफ तरीके से करना है। तो ये सारी बातें इस सत्र के अंदर हमने डिस्कस की है, और कुछ बातें जो ध्यान देने की हैं वो ये है, हमें सीढ़ियां अवॉइड करना चाहिए, अगर बहुत मजबूरी भी है तो धीरे धीरे 2 स्टेप चढ़ के फिर रुक के फिर सीढ़ियां चढ़े। दूसरा, कभी भी जैसे हम स्टेशन पर जाते हैं, टाइम से नहीं निकले हैं, तो जल्दबाजी में हम अपना सूटकेस उठाकर भागना शुरू करते हैं, एक तो समय का प्रेशर है उस वक्त कि कहीं ट्रेन मिस ना हो जाए, फिर हम एक्सेस लोड लेकर जा रहे हैं जबकि हमें वेट उठाना मना है, और फिर हम जब भागते हैं तो फिर ये फिर एक ज्यादा बर्डन हो जाता है। तो इस तरह से एक्टिविटी हमें नहीं करनी है कि जब आप स्टेशन पे जाते सामान उठाकर भागना शुरू करते हैं, तो ये अवॉइड करेंगे, समय से पहले जाएं और वेट अपने कुली से उठाएं, या आपके साथ कोई भी जाता है उससे वो वेट उठाएंगे, कभी भी हैवी चीज को नहीं खिसकाएंगे, जाम जो ये हो जाते हैं दरवाजे, बॉल्स चिटनी जिसको बोलते, वो कभी जबरदस्ती खोलने की कोशिश ना करें, ठीक है। अगर आपकी बीमारी के ऊपर भी डिपेंड करता है, तो ज्यादा कंसंट्रेशन का वर्क होता है, तो अगर ज्यादा प्रॉब्लम्स है तो यही कहा जाता है कि भाई आपको गाड़ी भी लंबे रूट की नहीं चलानी है, ठीक है, थोड़ा दूर जाना है वो बात अलग होती है। तो इन कुछ बातों का हम ध्यान रखेंगे, जैसे स्कूटर के किक भी लगाना होता है, या कपड़ों से भरी बाल्टियां बहने उठाती हैं, गीले कपड़े हो, तो इस टाइप के वेट हम अवॉइड करें, इससे कभी भी क्लॉट हो सकता है, बन सकता है। तो ये था एक्सरसाइज के बारे में कुछ बातें। तो एक्सरसाइज, कोई एक्सरसाइज है क्या, क्या एक्सरसाइज बताया, मॉर्निंग वॉक, अब मैं कुछ पॉइंट्स आपको जरूर बताऊंगी कि हमें और कोई एक्सरसाइज नहीं करनी है। सिर्फ कौन सी एक्सरसाइज करनी है? सभी बोले कौन सी एक्सरसाइज करनी है? मॉडरेट एरोबिक ब्रिस्क वॉक, वह ठीक है ना। और आज ये हमारे हेल्थ के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है जो हर कोई कर सकता है, हर एज का व्यक्ति कर सकता है। हेल्थ के लिए लोग व्यायाम इत्यादि भी करते हैं, हेल्थ के लिए लोग प्राणायाम इत्यादि भी करते हैं और योग इत्यादि भी करते हैं, लेकिन तीनों में डिफरेंस है। आप लोगों में से प्राणायाम इत्यादि कौन करते हैं? हाथ उठाएं जो भी प्राणायाम करते हैं। और कोई नहीं करता, तो जो भी भाई बहन करते हैं प्राणायाम, थोड़ा सा हम समझे इससे हमें क्या फायदा है, क्या ये योग है, क्या ये व्यायाम है, ये क्यों करते हैं हम? ब्रीदिंग एक्सरसाइज है ना, तो इसके बारे में थोड़ा सा समझे हम। प्राणायाम ये सब हठ योग के अंतर्गत आता है, जो कि द्वापर से शुरू हुआ, जब तत्वों की भी एनर्जी कम हो गई और आत्मा की भी एनर्जी कम हो गई। अब प्राण का मतलब क्या बताया? राजयोग। तो प्राण का मतलब क्या है? आत्मा। एक्चुअल में सबसे पहले द्वापर के शुरुआत में पतंजलि योग आया, उन्होंने अष्टांग योग, जानते होंगे आप सभी जो भी थोड़ा बहुत करते हैं, जिसके अंदर आत्म संयम और आत्म शुद्धि, जिसको कहते हैं यम नियम, यम मतलब आत्म संयम, नियम आत्म शुद्धि, प्राणायाम अनुलोम एंड विलोम, आसन शारीरिक मुद्राएं, और प्रत्याहार जो कि इंद्रियों के जो प्रलोभन है उससे अपने आप को बचाना, धारणा, धारणा मतलब चिंतन, ध्यान, ध्यान मतलब तल्लीनता एकाग्रता, और समाधि, समाधि मतलब पूर्ण आत्म तन्मयता, ठीक है। तो ये जो अष्टांग योग है, इस अष्टांग योग के अंदर ही एक पॉइंट है प्राणायाम। तो ये जब आत्म शुद्धि के नियम, इंद्रियों के प्रलोभन से दूर जाना, धारणा मतलब चिंतन ध्यान, लेकिन आत्मा की नॉलेज थी हमें उस समय? आत्मिक ज्ञान तो हमारे स्वरूप में था, उस समय बॉडी कॉन्शियसनेस आ गया था। मैं कोई डिबेट नहीं कर रही हूँ, जो मैं राजयोग से समझी हूँ मैं वो आपको बता रही हूँ। आत्म शुद्धि तो हम तब करें ना, आत्म संयम तो हम तब कर सके, इंद्रियों के प्रलोभन से तो हम तब छूट सकते हैं, या कोई भी आसन क्रिया हम तब कर सकते हैं जबकि शरीर के अंदर शक्ति होती है, जबकि आत्मा के अंदर शक्ति होती है। क्या चिंतन में लाएं? ये भी हमें क्लियर नहीं है, इसलिए तो हमारे ऋषि मुनियों ने मन को शून्य कर दिया, कर्मेंद्रियों के प्रलोभन से बचने के लिए आंखें बंद करके उन्होंने तप करना शुरू किया। चिंतन में उन्होंने राम राम राम, किसने अल्लाह अल्लाह, इस टाइप से वाहेगुरु, अनेक तरह के जप करना शुरू किया। तो हम समझे आत्म संयम, आत्म संयम कब हो सकता है? आत्मा के अंदर जो विकार आ गए, जब हम उन विकारों का परहेज करना बंद करें तब आत्मिक स्थिति रह सकती है। तो प्राण मतलब आत्मा, प्राण से ही प्राणी शब्द आया, तो प्राणायाम, आयाम मतलब निरोध, किस चीज का निरोध करना है? जो हमारी आत्मिक शक्ति जो बची हुई थी वो शक्ति बची रहे, वो वेस्ट ना हो, उसको हमें किसी तरह से संचित रखना है, क्योंकि हमारे अंदर में उस समय आध्यात्मिक पावर कम होने की वजह से मानसिक दुख, चिंता, भय और विकार, क्रोध, लोभ, मोह, अशांति इत्यादि पैदा हो रहे थे, ईर्ष्या द्वेष, और जब ऐसी स्थिति होती है तो ऐसे में जब बहुत चिंता होती, क्रोध होता, गुस्सा होता, तो आप गहरी और डीप सांस ले सकते हैं। जब ऐसी स्थिति होती है तो ब्रेन को ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाती है, जब हमें गुस्सा है, चिंता है या जल्दबाजी है। और यही वजह है कि जब हम बहुत फास्ट बोलते हैं, दौड़ते हैं, गुस्सा इत्यादि में होते तो हमारा सांस फूलता है, और उस समय हमारे सेल को, ऑर्गेन को प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रही है। इसलिए क्या कहते, डीप ब्रीदिंग। अब एक घंटा बैठकर या 15 मिनट हमने गहरी सांसें ली, ठीक है, लेकिन अगर दिन भर हम अनेक तरह के कर्म करते हैं, मानसिक परेशानियां भी होती हैं, कर्म भी होते, शारीरिक वर्क भी होता है, प्राणायाम सांस का आना और जाना एक ऑटोमेटिक क्रिया है। कैसी क्रिया है? ऑटोमेटिक क्रिया है। जब हम गुस्सा इत्यादि में होता है तो हार्ट जल्दी जल्दी बीट, हार्ट बीट होती है, और उसका रेस्टिंग पीरियड कम हो जाता है, जो कि आपने समझा भी है, और वो जो बढ़ी हुई डिमांड है उसको पूरा करने की कोशिश करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वही हमें प्रॉब्लम आती है, ब्लॉकेज भी बढ़ते हैं और क्लॉट भी बनता है। तो बेस्ट एक्सरसाइज प्राणायाम क्या है कि जितना हम शांत चित रहेंगे, ज्ञान से भरपूर रहेंगे, लवफुल रहेंगे, सुख में आनंद में रहेंगे, पवित्र जीवन जिएंगे, उतना ही कैसे भी प्रॉब्लम्स आए, परिस्थिति आए, उस समय हमारी सांसें गहरी और रिदमिक चलेगी। नहीं तो अभी हमने प्राणायाम किया, हम उठकर बाहर गए, किसी ने हमें कुछ कटु वचन बोला, हमें गुस्सा आ गया, तो वही सांस ऊपर नीचे होता है या नहीं? तो कहां गया प्राणायाम का इफेक्ट? क्योंकि सांस का आना जाना कैसी क्रिया है? ऑटोमेटिक क्रिया है। जल्दबाजी इत्यादि में अपने आप जल्दी सांस चलता है। तो प्राणायाम आप करो, प्राणायाम का मतलब समझें कि हमारा जो आत्मिक पावर है उसको बचाएं। जितना पीसफुल, लवफुल होकर हम सांस लेंगे, उतना सांस गहरी और रिदमिक चलेगी, ना कि हम थोड़ी देर बैठ के लंबे लंबे सांस लें। मेरे पास एक भाई आए थे प्राणायाम सिखाने वाले, मैंने कहा आप तो प्राणायाम सिखाते, आप क्यों राजयोग सीखना चाहते? तो उन्होंने कहा मैं प्राणायाम इसलिए सीखना चाहता हूँ क्योंकि मेरे अंदर में बहुत टेंशन रहती है, तो फिर राजयोग टेंशन रहती है। सारी बीमारियों का कारण क्या है? स्ट्रेस, टेंशन, चिंता, गुस्सा, जिससे हम पाप कर्म करते हैं, इससे स्ट्रेस बनता ना, भय बनता है। तो सोचे हम क्या है प्राणायाम, क्यों शुरू किया था हमारे ऋषि मुनियों ने, और क्या करते, और भी जैसे कई हार्ट पेशेंट भी आते जो प्राणायाम करते, वो क्या कहते, 5 मिनट करते हैं उसके बाद हमें पेन होना शुरू होता है या हार्ट बीट इरेगुलर हो जाती है, हम कर नहीं पाते। इस तरह से अगर हार्ट का पेशेंट प्राणायाम करता है तो कभी भी क्लॉट बन सकता है। तो आपको प्राणायाम क्या करना है, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, ज्ञान से भरपूर होकर अपनी मानसिक प्रॉब्लम का सोल्यूशन करें, जो भी होती है, सारे शारीरिक वर्क करें, तो आपका 24 घंटे प्राणायाम होता रहे। हमें अपनी आध्यात्मिक पावर को बढ़ाना है। क्लियर हुई बात? शवासन भी करते होंगे लोग। अब राजयोग ने हमें क्या सिखाया, सौ आसन के अंदर क्या करते हैं हम? आत्मा को, ये देह क्या है, 5 तत्वों का बना हुआ एक पुतला है, तो देह तो है ही शव, इसमें चेतन शक्ति है आत्मा। आत्मा जब इस शरीर से निकल जाती तो शरीर जड़ हो जाता, मानते हैं ना ये बात? और जब सौ आसन के अंदर हम क्या करते, अपने संकल्पों को कंट्रोल करते हैं, हर एक ऑर्गन से अपने आप को डिटैच करने की कोशिश करते हैं, यही करते हैं ना? अगर हम सोल कॉन्शियस हैं, जो आप योग में भी करते, तो उस समय हम इस देह की दुनिया पदार्थ, वैभव, बीमारी सबसे दूर नहीं होते, होते हैं ना। तो हम सोल कॉन्शियस होकर अगर हम कर्म करें तो हम 24 घंटे सब आसन पर स्थित हैं, क्योंकि देह तो देह समझ के कर्म करना ही क्या है, शव के भान में रहना है। हठयोग के अंदर ये बताया जाता कि कर्म करते हुए कर्म की अनुभूति में स्थित रहना, कर्म करते हुए कर्म की अनुभूति में स्थित रहकर कर्म करो, तो वो तो देह भान है, आत्म अभिमान कहाँ है। हम तो कर्म करते हुए आत्मा समझ परमात्मा के श्रीमत प्रमाण और आत्मा की याद में कर्म रह कर्म करते तो हम इस देह भान से छूट सकते हैं। नहीं, हमने थोड़ी देर बैठकर ये जो हम अभ्यास करते उसके लिए भी हमारे अंदर में त्याग व्रति, उपराम व्रति का होना बहुत जरूरी है। जैसे डॉक्टर गुप्ता बताते ना फ्रीक्वेंसी की बात, ये फ्रीक्वेंसी कैसे बनेगी, जितना हम देह की दुनिया वैभव पदार्थ से उपराम होते जाएंगे तब हमारी वो फ्रीक्वेंसी फरिश्ता अवस्था आती जाएगी। अगर हम कोई भी प्रॉब्लम सवासन किया थोड़ी देर, फिर वही बात मैं कहूंगी, बाहर उठ कर गए कोई प्रॉब्लम आई तो उस समय क्या है, फिर देह के भान में आ गए तो कहां गया सवासन का इफेक्ट। और वो प्रॉब्लम अगर हम आत्मा समझकर श्रीमद प्रमाण सोल्व करते हैं तो हम सवासन पर स्थित हैं। भोजन भी हम करते हैं तो आत्मा समझ शरीर को भोजन ग्रहण कराते हैं तो वो कौन सी स्थिति के अंदर है, आत्मिक स्थिति। इससे ये देह की भी पावर, प्रकृति भी हमारी शुद्ध होती है और मानसिक पावर भी हमारे अंदर में बनी रहती है। जितने भी इमोशन भावनाएं इत्यादि होती है सबका सेंटर है ब्रेन, चाहे नर्वस सिस्टम, चाहे मसल का कार्य करने का सिस्टम, सब ब्रेन के अंदर है। और यूं तो हम रात को जब सोते हैं तो आत्मा अपनी इस मोटर एक्टिविटी से परे होती है, लेकिन अगर हमारे अंदर में कोई टेंशन है तो रात में टेंशन लेकर सोए, सुबह उठते वही टेंशन याद आती है और कभी हमें फ्रेश फील नहीं होता सुबह उठकर अगर टेंशन है तो रात भर हम मोटर एक्टिविटी से परे रहे फिर भी हम फ्रेश क्यों ना हुए। सोचे देहभान तो नहीं था ना सोते वक्त। तो सब आसन क्या है, 24 घंटे आप सोल कॉन्शियस रहने का पुरुषार्थ करें। सोल कॉन्शियसनेस मतलब वही आत्मिक गुणों में व्यवहार करने की कोशिश करें, क्योंकि आसन का मतलब फिजिकल पोस्चर बनाने से नहीं है। गुरु गोरखनाथ ने जितने आत्मा के गुण उतनी ही फिजिकल क्रियाएं बनाई है, क्योंकि आत्म अभिमान खो गया था, आत्मिक अवस्था तो नहीं रही थी और देह भान पैदा हो रहा था, तो माइंड बॉडी, माइंड स्पिरिचुअल एनर्जी नीचे की तरफ बह रही है और राजयोग में स्पिरिचुअल एनर्जी ऊपर से आ रही है और फिर वो मन के जरिए शरीर में जा रही है। तो सव आसन कौन सा करना है हमें, सोल कॉन्शियसनेस, आत्मा समझकर हर कर्म। तो आप 24 घंटे सव आसन पर हैं, 24 घंटे आपका प्राणायाम हो रहा है, कोई फिजिकल क्रिया करने की जरूरत नहीं है। हमारे ऋषि मुनियों ने आजकल की तरह व्यायाम तो नहीं किया कि वो जोर जोर से दौड़ते थे, जॉगिंग करते थे या स्विमिंग, ऐसा किया क्या उन्होंने? आज हम तो ये करते हैं हेल्थ के लिए, ऐसा क्यों? तो उन्हों का जो ये कार्य था उस समय इतनी बीमारियां नहीं थी, बीमारियां भी माइल्ड फॉर्म में थी, लाफिंग थेरेपी इत्यादि उसी समय की ये सारी बातें हैं। बुद्ध के समकालीन एक होत्से नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने ये लाफिंग थेरेपी शुरू की। वो एक बैठ जाते थे चौराहे पर, क्योंकि लोगों में आनंद खुशी नहीं रहा था, और वो जब एक चौराहे पर बैठ जाते और जोर जोर से हंसते तो उनको हंसता देखकर दूसरे लोग भी हंसते, जिससे जो थोड़े से विकार आए थे उसकी वजह से जो मन में उदासी, जो थोड़ी बहुत सिस्टम में गड़बड़ होने शुरू होती थी वो ठीक हो रही थी, क्योंकि स्पिरिचुअल एनर्जी ग्लैंड के जरिए ही बह रही है, वो उनको मिलती। लेकिन बात बनी क्या, लाफिंग थेरेपी वाले क्लब में भी डॉक्टर गुप्ता ने लेक्चर दिया और वह जब वहां पर पूछा किसी को क्रोध आता है, चिंता है, स्ट्रेस है, एक भी ऐसा नहीं जो ये कहे कि मुझे स्ट्रेस चिंता या मुझे क्रोध नहीं है, तो सिर्फ हाहा करने से क्या होगा? होगा कुछ? हमें क्या करना है? अपनी सोल कॉन्शियस स्थिति को बनाए। फिजिकल क्रियाओं की बात नहीं है। हाँ, इतना जरूर है, आज तत्वों की एनर्जी इतनी ज्यादा कम हो गई है क्योंकि सब कुछ रिसाइकलिंग है, शुद्ध नहीं है, सब में केमिकल्स हैं। जो खाद क्या है? केमिकल। नेचुरल खाद भी अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे में जो शरीर के अंदर भोजन जा रहा है, जो विषैले पदार्थ बन रहे हैं, उसके लिए व्यायाम। व्यायाम क्या? फिर आयाम मतलब निरोध। किस चीज का? जो फिजिकल एनर्जी जो भोजन के जरिए हम ले रहे हैं, और अगर उससे जो गार्बेज बनता है, जो फ्री रेडिकल्स बनते हैं हमारे शरीर के अंदर, टॉक्सिक वेस्ट उससे बढ़ता जाता है, जिससे सेल और ऑर्गन डैमेज होते हैं, अगर वो हमारे शरीर से नहीं निकलते तो हमारी शारीरिक शक्ति बढ़ नहीं सकती। तो व्यायाम का मतलब भी क्या हुआ? जो हमारी फिजिकल एनर्जी है उसको व्यय होने से रोके। इसके लिए हम क्या करते हैं? आजकल लोग कितनी तरह की एक्टिविटी करते हैं, कोई जॉगिंग करता है, कोई स्विमिंग करता है, कोई साइकिलिंग करता है, और हार्ट के पेशेंट को क्योंकि शुरू में इतनी विग्रस एक्सरसाइज नहीं करनी है, तो हमें क्या करना है? प्राणायाम, सवासन, अनेक शारीरिक मुद्राओं की तरफ या मानसिक उनकी तरफ ना जाकर, सोल कॉन्शियस रहकर सिर्फ एक ही एक्टिविटी करनी है, वो है मॉडरेट एरोबिक ब्रिस्क वॉकिंग। मैं ज्यादा इसके डिटेल में नहीं जाती हूँ, एक्चुअल में इसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करें तो ये एक अच्छा क्लास आपको मिल सकता है। कोई फिजिकल क्रिया की इसके अंदर बात नहीं है, हमें तो आत्मा को आसन दिलाना है कि मैं कैसी आत्मा हूँ? पवित्र आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ, शांत आत्मा हूँ, आनंदमय आत्मा हूँ। ये हमारे आसन है, और देह को आसन है, इससे हमारी आध्यात्मिक और शारीरिक पावर दोनों बढ़ेंगी। नहीं तो क्या हुआ है, ये आत्मिक ज्ञान ना होने की वजह से, परमात्मा का ज्ञान ना होने की वजह से, श्रीमत उनकी ना होने की वजह से, इन आसनों के जरिए हमने अपनी सारी आध्यात्मिक और शारीरिक पावर कम कर दी। आज कहां गए वो ऋषि मुनि जो घंटों घंटों बैठकर तप करते थे? हम क्यों नहीं कर सकते? बल्कि राजयोग के जरिए हमारी आध्यात्मिक और फिजिकल पावर दोनों बढ़ती है। एक भाई ने मुझसे प्रश्न किया था कि बहन जी, आप इतनी देर कैसे बैठती हो योग में? बहुत अच्छे वाइब्रेशन लगते हैं, आप कैसे बैठते हो बताओ? ये भी स्टेमिना धीरे धीरे बढ़ता है। मैं अपनी एक एग्जांपल देकर खत्म करती हूँ। मुझे भी रीढ़ की हड्डी में क्रैक आ गया था, कुछ कोलाइटिस हो गया था बहुत पहले, और जिससे स्टेरॉइड बहुत खाने की वजह से हड्डियां बहुत खोखली हो गई थी, अपने आप ही टूट गई, क्रैक हो गई थी, और 6 महीने बेड रेस्ट भी लेना पड़ा। उसी समय सारा इंट्रोस्पेक्शन किया और धीरे धीरे वो ठीक तो हो गया, लेकिन जब पहली बार मुझे ऐसे संदली पर बैठने के लिए, योग के लिए कहा गया था, तो मेरे अंदर में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि मैं यहां बैठकर कभी योग करा सकती हूँ। और इससे पहले क्योंकि दादी जी ने मुझे 2-3 बार कुछ सेवाएं दी थी, और कॉन्फिडेंस ना होने की वजह से मन करता था करूं, लेकिन मैं समझती मैं ऐसे नहीं बैठ सकती, तो मैंने कहा नहीं, ये राइट नहीं है। शायद अंदर में कुछ मुझे हुआ कि मैंने कहा हाँ मैं कराऊंगी। और जब मैं पहली बार पांव फोल्ड करके बैठी, क्योंकि प्रॉब्लम की वजह से कि मैं बैठ नहीं पाई, 2 मिनट में मेरे पांव सो गए, और फिर भी जबरदस्ती बैठी भी रही तो बिल्कुल पांव ऐसे हो गए जैसे उठ ही नहीं सकती थी। लेकिन मैंने कहा ये क्या, क्योंकि मुझे तो प्रॉब्लम्स है। लेकिन धीरे धीरे माइंड को कूल करते 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 करते, और आज घंटों भी बैठ जाते हैं तो पता नहीं चलता। हाँ, इतना जरूर होता है, जितनी कोई ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी या कोई प्रेशर आ गया है उस समय बैठना मुश्किल होता है। नहीं तो इस तरह से अभ्यास से मैंने ये महसूस किया है, आध्यात्मिक और फिजिकल दोनों पावर हमारी इम्प्रूव होती है। ये भी संस्कार है। तो मैं आपको यही कहूंगी कि राजयोग लाइफस्टाइल लेंगे हम, हठ योग की बात नहीं है, और कोई प्राणायाम, सवासन, कोई फिजिकल क्रिया आपको करने की जरूरत नहीं है। मॉडरेट एरोबिक ब्रिस्क वॉकिंग से आपके हर अंग का, हर ज्वाइंट का अपने आप क्या हो जाता है, मसाज हो जाता है, उसके टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं। सिर्फ एक एक ये करने की बात नहीं है, जब आप सोल कॉन्शियस होकर कर रहे हैं तो आपके विचार, मानसिक पावर, स्ट्रेस भी रिलीज होता है और फिजिकल पावर भी आपकी बढ़ती है। बेस्ट है, क्योंकि आज के बिजी शेड्यूल के अंदर इतना समय निकालना भी बहुत है, लेकिन सिर्फ बैठकर अनुलोम विलोम करने से या थोड़ी देर सवासन करने से आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी, बीमारियां खत्म हो जाएगी, ये संभव नहीं है। या दवाइयां आपकी कम हो जाएगी, या आपका आने अगला जन्म श्रेष्ठ बन जाएगा, ये हम नहीं कह सकते। और पीछे भी मेडिकल एक रिसर्च के अंदर बताया कि प्राणायाम इत्यादि नहीं करना चाहिए, इससे तो उल्टा ही स्ट्रोक की बीमारियां, हार्ट की बीमारियां और बढ़ती है, क्योंकि हमने ऑक्सीजन लेवल भी देखा और आज जो हमारे जीवन में स्ट्रेस प्रॉब्लम है वो भी देखे, हम अपना खान पान भी देखे कैसा है। हमें तीनों चीजों में सुधार करना पड़ेगा और एक प्रॉपर टेक्निक उसके लिए अपनानी जरूरी है। हम कोई प्राणायाम इत्यादि नहीं करते, बल्कि कोई प्रॉब्लम आती तो कूल अपने आप को करने की कोशिश करना है, ये प्राणायाम करो। लवफुल होने नहीं, प्यार जागृत होता तो उसको बढ़ाने की कोशिश करो, परमात्मा की श्रीमत पर चल के आपसी संबंधों में सुधार करने की कोशिश करें, ये बहुत जरूरी है। क्लियर हो रही है ये बातें? समय है बाकी इतना सब करने के लिए कि प्राणायाम भी कर लें, ये भी कर लें, कुकिंग में भी इतना समय देकर हेल्दी डाइट हम बना सकें, बाकी आपके ऊपर है जो भी आप करें। बाकी हम तो यही करेंगे, नो प्राणायाम, नो सवासन। प्राणायाम को जो तरीका आपको बताया, सोल कॉन्शियसनेस होकर हर कर्म करो, आपका प्राणायाम है, चाहे फिजिकल एक्टिविटी है, वही आपका सवासन है। सोल कॉन्शियस होके देह का भान छोड़ दो, क्योंकि देह तो है ही शव। चाहे हम कोई भी हल आसन करते, कोई भी आसन करते, भाई उसमें नर्व्स में पावर चाहिए, और नर्व्स में पावर कैसे आएगी, जब उसमें शुद्ध ब्लड फ्लो करेगा। मसल्स में पावर चाहिए, बोन्स में पावर चाहिए, और आज वो इतने मिनरल्स इत्यादि हमको मिल रहे हैं क्या, ना हमारा वो भोजन है। कितने स्टडी होती, आज मिनरल्स ही 80% मिनरल्स जो हैं हमें खाने में नहीं है, और जो थोड़े बहुत अवेलेबल भी हैं, जो हमारा आर्टिफिशियल स्टाइल है कुकिंग का, स्वाद का, वो सारे उसमें फिनिश हो जाते, कोई पानी में डिसॉल्व हो जाते, तो कोई आग के कॉन्टेक्ट से हो जाते, कोई हम रेफ्रिजरेटर में रख के उसको फिनिश कर रहे हैं। तो हमें ये है पावर बढ़ाने का समय, किस चीज का समय है, पावर बढ़ाने का, फिजिकल तत्वों की भी और आध्यात्मिक पावर। आध्यात्मिक पावर बढ़ेगी तो मानसिक बढ़ेगी और फिजिकल पावर भी बढ़ेगी, ठीक है। बाकी भोजन के बारे में जब चर्चा करेंगे, कुछ बातें उस समय आपको बताएंगे कि कैसे भोजन भी हमारा माइंड को भी इफेक्ट करता है और शरीर को भी इफेक्ट करता है। ओम शांति। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, कुछ जो आप बीटा ब्लॉकर, कोई भी ऐसी दवाई लेते हैं, वो सारी बातें आप अपने डॉक्टर से कीजिएगा। मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, हाँ इतना जरूर है, जिसके पास भी शरीर होता है उसको शरीर का ज्ञान होना, भोजन का ज्ञान होना, मन का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। हर एक को अपने प्रॉब्लम सोल्व करनी आनी चाहिए, अपने इस शरीर को चलाना आना चाहिए। जरूरी नहीं है कि कार की जहां मैन्युफैक्चरिंग होती है वो ही कार के रिपेयर का ज्ञान रखे, दूसरे लोग भी यूज करते करते उस मशीन को या उस कार को, कोई भी हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, उसकी रिपेयरिंग का ज्ञान आ जाता है। तो ये बहुत जरूरी है कि हम सभी के पास ये ज्ञान होना जरूरी है। सिर्फ डॉक्टर ही की बात नहीं है, डॉक्टर से हम सीखें और फिर हम खुद भी डॉक्टर बन सकते। हाँ, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, जो चीजें हमने नहीं सीखी वो नहीं हम बताएंगे, जितना हमने समझा उतना हम दूसरों को समझाएंगे। और ये चीजें पहले ऑटोमेटिकली हमारी बुद्धि में थी, हमारे अंदर में था, ये ज्ञान तो लुप्त हो गया क्योंकि हमने एक चीज में अपने आप को कंसंट्रेट कर लिया। जो भी हम रोल अदा करते हैं, हम चाहें तो अपने आप को, जब राजयोग जो इंसान लेता है ना उसमें सब ज्ञान आ जाता है, चाहे वो राजनीति का ज्ञान है, चाहे वो किसी धर्म से कनेक्टेड ज्ञान है, चाहे वो साइकोलॉजिकल ज्ञान है, चाहे वो फिलोसफिकल ज्ञान है, चाहे वो फिजिकल। क्योंकि जब आप राजयोग करेंगे तो अपने आप आपके शरीर के अंदर सुधार होगा, साइकोलॉजी आपकी अपने आप चेंज, ये नेचर की ओर भी है, ये आयुर्वेद भी है, हर चीज इसके अंदर है। ओके, एक मिनट हम बाबा की याद में बैठते हैं।